महाराज धीमान पिता के न रहने पर ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र सूख गया हो, ऐसा लगता है मानो चंद्रमा से रहित आकाश हो गया हो, मेरे पिता चले गए। इतना कहकर भरत के आंखों की अश्रुधारा बहती गई। भरत जी महाराज ने एक वस्त्र लिया और उसको अपने मुंह पर रखा और बार बार अपने आंखों को पूछ रहे, लेकिन अश्रुधारा रुक नहीं रही है। इस प्रकार से देख करके माता ने अपने पुत्र को गोद में लिया। चंद्रमा के समान जिसका मुख था, ऐसे भरत को अपने गोद में लेकर उसको सहलाते हुए कहा, बेटा उठो, बुद्धिमान पुरुष होने वाली बात पर विचार नहीं करते हैं, वो आगे किए जाने वाली बात पर विचार किया करते हैं। तुम्हारे जैसे पुत्र इस प्रकार से शोक नहीं करते हैं। तुम बड़ी सभा के अंदर बैठने वाले हो, तुम बड़े दान के अधिकारी हो, यज्ञ के अधिकारी हो, शास्त्र के अधिकारी हो, तपस्या के अधिकारी हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है भरत, तुम्हारी बुद्धि में शोक का क्यों प्रवेश किया? बेटा भरत, शोक मत करो। लेकिन भरत कहां मानने वाले, भरत तो अपने भूमि के ऊपर ही सिर रख दिए और विलाप करते रहे, विलाप करते रहे। ओहो, कितना अच्छा होता मां, ध्यान से सुनना, भरत जी कह रहे हैं कि हे मां, कितना अच्छा होता कि महाराज दशरथ मरने से पहले पहले राम का राज्याभिषेक कर देते। मैं उस यज्ञ को देखता, राम के हाथ अपने हाथों से राम का तिलक करते और मैं अपनी आंखों से उसको देखता, और फिर ये अपनी जीवन यात्रा पूरी करते तो दशरथ जी महाराज का जीना पूरा सफल हो जाता। आज मेरा हृदय फट रहा है मां कि राम जी को उन्होंने युवराज पद पर क्यों नहीं बैठाया है। ओहो, समय समय की बात है मां, पिताजी की क्या बीमारी हो गई थी, वो किस बीमारी से मरे थे? ओहो मां, मेरे बड़े भाई राम के चरणों में प्रणाम है, मेरे भाई लक्ष्मण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, है मुझसे छोटा लेकिन मुझसे बड़ा भाग्यशाली है, उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार किया है। धिक्कार है मुझे कि पिता के शव को भी मैं नहीं देख सका। मां, जब कभी भी मैं यहां तुम्हारे महल में आता था तो मेरे पिता कैसे उछल करके मुझे गोद में बैठाते, मेरा माथा सूंघते। आज मेरे पिता का वो प्यार भरा हुआ हाथ कहां गया जो मेरे सिर के ऊपर रहा करता था? मैं भी तो बालक था, कभी कभी पिताजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर मिट्टी में लोटपोट होता तो कहता, बेटे मिट्टी लग गई, तुम्हारी मिट्टी झाड़ देता हूं। वे अपने हाथों से मेरी मिट्टी झाड़ते थे, जो मुझे बहुत स्नेह देते थे। वे पिता आज चले गए, अधूरा काम करके गए। ठीक है मां, होना सो होता है, तुम जल्दी अपने सेवकों को सूचित करो कि मैं राम के महल में जाना चाहता हूं और राम के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूं। पिता के बाद तो अब मेरे लिए पिता राम ही है। हां के कही, माता अरे मैं तो, तुम सच कहती हो, मुझे शोक नहीं करना चाहिए, पिता मरे हैं तो राम के पिता मरे, भरत के पिता थोड़े ही मरे हैं। भरत के पिता राम तो अभी बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, मैं दशरथ जी के लिए शोक नहीं करूंगा, सूचना दे रहा हूँ कि मैं राम जी के महल में आ रहा हूँ, राम जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, उनका सेवक हूँ। पिता का जो बड़ा लड़का होता है वो अपने भाइयों के लिए पिता के समान ही होता है। इस बात को राम जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। माँ वो धर्मशील है। आहो, जाते जाते पिता ने क्या बात कही माँ, एक बात तो बताओ, उनकी अंतिम बात क्या थी? उन्होंने मेरे लिए भी कोई बात कही कि भरत आवे तो तुम भरत को ये बोल देना, वो बोल देना, कुछ बात कही? केकई ने कहा कि हाँ कुछ बात कही थी। क्या कहा? वो बोल रहे थे कि हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, तुम इस संसार में बड़े महापुरुष थे। ऐसे करके वो जोर जोर से राम के, लक्ष्मण के और सीता के नाम लेकर उनके वियोग में छटपटा रहे थे, जिस प्रकार बहुत थोड़े पानी में बड़ी मछली छटपटाती है, ऐसे दशरथ जी महाराज अपने परिवार के बीच में राम और लक्ष्मण के, सीता के वियोग में छटपटा रहे थे। और काल धर्मम परिक्षिप्त है, जाने क्या उनका काल आया कि उस छटपटाहट में उनके प्राण निकल गए। और मरते मरते ये कहा, तुम्हारे पिता ने कहा कि ओहो बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो 14 बरस तक जीवित रहेंगे और राम का अयोध्या में प्रवेश देखेंगे और राम को राज्यासन पर विराजमान होकर उनके राज तिलक का दर्शन करेंगे, जो लक्ष्मण का दर्शन करेंगे, जो सीता के दर्शन करेंगे, बड़े भाग्यशाली वे पुरुष होंगे। क्या बात हुई माँ, ये क्या बोल रहे हो? मैं एक शोक से तो अभी उभरा ही नहीं हूं, दूसरी बात क्या है? राम यहां नहीं है, सीता भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम सीता और लक्ष्मण को लेकर कहां गए? क्या बात हुई माँ, ये एक साथ विपत्ति की बातें तुम कैसे कह रही हो? माँ मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, मैं इतनी विपत्ति की बात सुन नहीं सकता हूं, विपत्ति के पहाड़ में दब जाऊंगा माँ, मेरा हृदय फट रहा है। क्या बात हो रही है अयोध्या में? हाँ भरत, मैं तुमको सत्य बात बोलती हूं, वे तुम्हारे बड़े भाई दशरथ जी के बड़े लड़के वल्कल वस्त्र पहन करके यहां से दंडकारण्य की ओर भेजे गए हैं, साथ में लक्ष्मण उनकी सेवा में गया है और पातिव्रत्य का धर्म निभाने वाली सीता भी उनके साथ है। भरत जी ने कहा कि दंडकारण्य में, दंडकारण्य में तो उसको भेजते हैं कि जो राजकुमार चरित्रहीन होता है, जो शुभ आचार से हीन होता है, निकृष्ट कर्म करने वाला होता है, पापी होता है, अन्यायी होता है, दुराचारी होता है, वो दंडकारण्य में भेजा जाता है। मां क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन ले लिया या किसी धनी व्यक्ति का धन चुरा करके उसको गरीब बना दिया? क्या बात है? क्या राम के द्वारा परिस्त्री का कोई स्पर्श हो गया? क्या उस राम ने यहां कोई राजद्रोह कर लिया? ऐसा क्या अपराध हुआ कि राम को दंडकारण्य में भेजा गया? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो चंचला केकई अपनी बात कहते हुए कहने लगी, अरे भरत, तुम जरा किसी बात की गहराई में तो जाओ, राम ने न तो ब्राह्मण का धन चुराया है और कच्चिन नाड्यो दरिद्रोवा न किसी धनी आदमी को उसने गरीब बनाया है और न निष्पाप को उसने मारा है और न राम कभी अपनी आंखों से परिस्त्री को देखता भी है। बात कुछ और है। तो फिर क्या बात है मां, इतना ना होते क्या बात हो गई? भरत तुम राजकुमार हो, राजनीति से देखो, अपने मन से अपनी दृष्टि से सब चीजें मत देखो। तुमको आदि से अंत तक मैं कथा बताऊं, मैंने तुम्हारे लिए कितना कितना प्रयास किया है। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारे पिता के प्राण बचाए थे। तुम्हारे पिता ने मुझे दो वरदान देने के लिए कहा, मेरे पास वो वरदान सुरक्षित थे। उन दो वरदानों से मैंने एक वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा है और दूसरे वरदान में मैंने राम को 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में भेजा है। भरत दूसरे पहलू से देखो कि तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मैंने कितना सुगम बना दिया है। लक्ष्मण और सीता जो राम के दो सुदृढ़ स्तंभ थे वो दोनों इस समय अयोध्या से चले गए हैं और थोड़ा बहुत राम का कोई पक्ष लेने वाला था तो तुम्हारा पिता वो भी पंचत्व को प्राप्त हो गया है। अब ये राज्य तुम्हारे लिए किसी प्रकार से कोई बेरोक टोक वाला है, कोई रोक टोक वाला नहीं है, निरापद ये राज्य, इस राज्य को तुम स्वीकार करो। भरत तुम्हारे लिए मैंने बहुत उद्योग किया है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ताने खाए हैं। तुम्हें पता नहीं है उस दिन मुझे क्या क्या तुम्हारे पिता ने सुनाया था, लेकिन मुझे तो एक ही बात पर भरोसा था, संतोष था, है भी, अंतिम में राजगद्दी तो मेरे भरत की है ना। चाहे दशरथ मुझे कुछ भी कहे, चाहे कौशल्या मुझे कुछ भी कहे, चाहे प्रजा कुछ भी कहे, मेरी दृष्टि केवल राज सिंहासन पर थी और वो मेरे बेटे भरत को मिल चुकी है, उसको किसी प्रकार से कोई मना नहीं कर सकता है। इसलिए भरत शोक की जगह तो शोक तुमने कर लिया, तुम्हारा शोक पूरा हुआ, उठो बेटा और ये अयोध्या का निष्कंटक राज्य भोगो और तुम राज्य करके अयोध्या को अपने अधीन कर लो। वशिष्ठ आदि जितने ऋषि मुनि है कोई तुम्हारा विरोध करने वाला नहीं है। बेटा जिसके हाथ में राज्य होता है, सत्ता होती है, सब लोग उसके स्वतः ही वश में हो जाते हैं। इसलिए आज वशिष्ठ जी तुम्हारे हैं, सेनापति तुम्हारे हैं, कोष तुम्हारा है, खजाना तुम्हारा है, सेना तुम्हारी, सेनापति तुम्हारे, कोई तुमसे विपरीत बोल नहीं सकता है। जिनकी थोड़ी बहुत बोलने की औकात थी वो पहले से अयोध्या से बाहर भेजे जा चुके हैं। भरत अब इस समय शोक को छोड़ो और राजनीति को अपनाओ। ये सारी कथा सुनने के पश्चात भरत यूं मां की तरफ घूर घूर के देखने लगा। भरत ऐसे देखने लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी आग है, वो आग मेरे सामने खड़ी है और इस आग में से कैसे मैं बच करके निकल सकता हूं। ऐसे भरत जी महाराज डरे हुए भी और डराते हुए भी, शोकाभिभूत होते हुए भी और अपनी बुद्धि को कायम रखते हुए भी बहुत विचित्र ढंग से भरत जी महाराज ने उसको कहा है, मां तुम बड़ी निर्दयी हो, तुमने आज तक तो लोगों ने, मैंने देखा कि लोगों को मैंने रोग से मरते हुए देखा, बीमारी से मरते हुए देखा, अवस्थाओं में मरते हुए देखा, शस्त्रों से मरते हुए देखा और मारते हुए देखा, लेकिन इस प्रकार अपनी वाणी से मारते हुए और मरते हुए मैंने आज अयोध्या में पहली बार देखा है। वाणी से भी तुमने मार दिया। पिता से रहित, भाई से रहित, दो दो भाइयों से रहित, माता तुल्य सीता से रहित अयोध्या का राज्य तुमने हमको दिलवाया है। वाह वाह, बहुत तुमने राजनीति खेली, सारे कुल का तुमने अभाव कर दिया, सब कुल का नाश कर दिया और उस कुल की राजलक्ष्मी तुम मुझे देना चाहती हो। हमारे पिता को मालूम नहीं था, किसी ज्योतिषी को भी मालूम नहीं था और तुम्हारे बाप के यहां भी कोई उत्तम ज्योतिषी नहीं था कि तुम्हारे साथ जब हमारे पिता का विवाह हुआ, शादी हुई, तो किसी ने ये नहीं कहा कि दशरथ तुम एक सर्पणी के साथ शादी कर रहे हो, तुम एक अंगार के साथ शादी कर रहे हो, तुम्हारे कुल को जला देगी ये सर्पणी, तुम्हारे कुल को डस लेगी। ये मालूम नहीं था बेचारे दशरथ जी को, किसी ज्योतिषी ने भी बताया नहीं था। ऐसे इतना बड़ा काम करके भी कहीं तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी सनक नहीं है, विधवा होकर के भी तुम वही राज्य की दृष्टि और पुत्रहीन होकर के भी तुम यही बात बोलती हो। सही बात है, इस अयोध्या के अंदर जब से तुम यहां आई हो तभी से अनेक प्रकार के उत्पात प्रारंभ हो चुके थे, अंदर ही अंदर उनका बीज आज फूटा है। दशरथ जी महाराज को तड़फा तड़फा के तुमने मारा, वो इतने राम के लिए तड़पे, सीता के लिए तड़पे, तुम अपने वचन वापस नहीं ले सकते थे कि मैंने आपको वचन दिए वो मैं वचन वापस लेती हूं। राम को वन में भेज दिया, दंडकारण्य में भेज दिया, मैं पूछता हूं तो बोलती है कि नहीं कोई पाप तो उसका था ही नहीं। दशरथ जी महाराज तो अपने दिन निकाल गए राम के वियोग में, और राम दशरथ जी के बिना और अयोध्या के बिना जंगल में दिन निकाल लेंगे, परंतु तू कैकेयी किस प्रकार से जिएगी सोच ले। तुमने कौशल्या की ओर विचार नहीं किया, सुमित्रा की ओर विचार नहीं किया, वे बिचारे शोक से पीड़ित हो रहे होंगे, उनका भी तो कोई बेटा है। तुमको मैं जैसे प्रिय लगा हूं कि भरत मेरा बेटा है, क्या कौशल्या का राम बेटा नहीं था? क्या कौशल्या को ये बात अच्छी लगती नहीं थी क्या कि राम मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे? दुष्कर्म यदि जीवेताम प्राप्य त्वाम जननी मम। तुमको तो आप देख करके कौशल्या का जीवन और सुमित्रा का जीवन भी खराब हो गया, तुमको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। तुमने मुझे भी नहीं पहचाना, तुमने राम को भी नहीं पहचाना, तुमने अपने पति को भी नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि तुमने धर्म को नहीं पहचाना। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है वही धर्म वृत्ति को जान सकता है। तथा ज्येष्ठा ही मेरी बड़ी मां कौशल्या है, और उस कौशल्या ने सदा तुम्हारे साथ छोटी बहन जैसा बर्ताव किया है, और उस कौशल्या ने सदा मुझे राम से ज्यादा प्यार दिया है। ऐसे कौशल्या के पुत्र को तुमने वनवास में भेज दिया, वल्कल वस्त्र पहनाकर भेज दिया। ओहो कथम पापम ने सोच से, हे पापिनी तुमने लेश मात्र भी विचार नहीं किया इस बात पर। जिसके अंदर कोई गलती नहीं, जो शूरवीर है, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, उसके लिए तुम्हारे मुंह से शब्द निकल कैसे गए? बोलते समय में तुम्हारी जिह्वा रुक क्यों नहीं गई? तुम्हारे जीभ के अंदर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम्हारी जीभ उसमें कट करके बाहर क्यों नहीं आ गई? अपने वरदान को मांगते हुए तुमने अपने जीभ का बहुत बुरा दुरुपयोग किया है। राम और लक्ष्मण को तुमने राज्य से निकाला है, और मेरे लिए राज्य दिया है, तुमने संकल्प किया है ना, अब तो मैं केकई इस संकल्प को उल्टा करके ही रहूंगा। उपासितो भूत धर्मात्मा मेरुर मेरु वनम यथा। महाराज दशरथ जी महाराज कितने समझदार थे, राम जी को उन्होंने राज्याभिषेक के लिए तैयार किया, बहुत समझदारी का काम था। देखो कभी कभी अपने से पैदा होने वाला ही अपने पर सवार हो जाता है। तुम्हारे लिए इस अयोध्या के अंदर मैं ही भारी पड़ूंगा, क्योंकि कोई भारी नहीं पड़ेगा। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, परंतु सुमेरु पर्वत के ऊपर जंगल होता है, जंगल, वो जंगल ही सुमेरु पर्वत के लिए भार हो गया। तो मैं ही तुम्हारे लिए यहां अयोध्या में सबसे बड़ा भार हूं, और तुमने ये नहीं सोचा कि राम के बिना और दशरथ के बिना मेरा बेटा भरत किस प्रकार से राज्य को संभालेगा। एक छोटा सा बछड़ा हो उसके ऊपर बैल वाला वजन डाल दे, छोटा सा बछड़ा और बैलों से भरा हुआ गाड़ा, जो बैल ले जाते हो बोरियों से भरा हुआ गाड़ा जिसको बैल ले जाता है उसके बछड़े को जोत दे, बछड़ा ले जाएगा क्या? मैं दशरथ जी की जगह और राम जी की जगह बैठ करके और राजगद्दी भोग लूंगा, राज चला लूंगा, नहीं कर सकता। परंतु देख के कही तेरी इच्छा तो मैं पूरी नहीं होने दूंगा, ये तो तू निश्चित मान के चल। यदि रामस्य नावेक्षेथा, यदि राम ने तुम्हें अपने ढंग से मां नहीं कहा होता तो हे केकई आज मैं तुम्हारे साथ और ही बर्ताव करता, लेकिन तुमको राम ने अपनी मां कहा है, मुझे राम के शब्दों के ऊपर विचार करना है। तो बहुत पापिनी है तू, कुल कलंकिनी है, तूने हमारे कुल की मर्यादा का नाश किया है। हमारे इस कुल के अंदर बड़ा भाई होता है वही राजगद्दी पर बैठता है, सनातनी रीति है। हमारे कुल में क्या, और कुल में भी तो ऐसा ही होता होगा। अरे तुम जिस पियर में रहे, तुम्हारा जो पियर है वहां पर क्या रीति है, क्या ये रीति है, क्या तुम्हारा बाप छोटे भाई के, तुम्हारा बाप तुम्हारे भाइयों से छोटा था क्या? जब तेरा बाप अपने भाइयों में बड़ा था इसलिए राजगद्दी पर बैठा है, तो दशरथ जी का भाइयों में भी राम बड़े हैं, तो वो यदि यहां राजगद्दी पर बैठते हैं तो तुमने क्यों हस्तक्षेप किया हमारे यहां? सब राजाओं में तो ये नीति है, लेकिन केकई तेरे पीहर में क्या नीति होगी पता नहीं है। तूने हमारे कुल को भी डुबाया और अपने कुल को भी तुमने डुबाया। गतिमान विजाना सी, तुमको पता नहीं है, सब राजघरानों का पता नहीं है। तुमने तो केवल यहां एक षड्यंत्रकारी राजनीति खेली है, ये राजनीति तुम्हारी सफल नहीं होगी। तुम्हारे अंदर ये बुद्धि का मोह कैसे पैदा हो गया? हो गया तो हो गया, लालच बढ़ गया तुम्हारे अंदर, लालच घुस गया, लेकिन तेरे मन की बात तो किसी हालत में पूरी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहां से वन में जाऊंगा और राम के चरणों में गिर जाऊंगा। राम जी बड़े भोले और सीधे, मेरी बात को टालेंगे नहीं, और उनको मैं यहां अयोध्या ले आऊंगा, राजगद्दी पर बैठाऊंगा। और केकई मैं वन में जाऊंगा या तुझे वन में निकाल दूंगा, लेकिन मैं राजगद्दी भोग करके तेरे मन की बात कभी पूरी नहीं करूंगा। इस प्रकार से भरत जी महाराज जोर जोर से बोलने लगे, केकई उनके सामने कांपने लगे, केकई आंख फाड़ करके देखने लगे। केकई ने देखा कि अरे सारा काम भरत तो गड़बड़ कर रहा है। भरत जी महाराज ने फिर मां से कहा कि हे केकई, तू हमारी अयोध्या से निकलने लायक है, तेरा व्यवहार बिल्कुल राक्षस जैसा है, धर्म के द्वारा तू अयोध्या से परित्यक्ता हो गई है। मां मृतम रुदती भवे, आश्चर्य हो रहा है, तेरे पति मर गए हैं, तुझे तो बैठ करके रोना चाहिए, तू मुझे ये बात सुना रही है। एक बात बताओ कि तुम्हारा राम ने क्या बिगाड़ किया, तुम्हारा दशरथ जी ने क्या बिगाड़ किया, कि एक को तो मृत्यु दी गई, दशरथ जी को मृत्यु दी और तुमने राम को वन में भेजा। कहीं के कहीं तुमने किसी जन्म में भ्रूण हत्या जैसा पाप तो नहीं किया था, क्योंकि भ्रूण हत्या जैसा पाप करने वाली के मन में ही ऐसे विचार आ सकते हैं और के नहीं आ सकते। देखो कितनी केकई ने भ्रूण हत्या, केकई के विषय में भरत जी ने भ्रूण हत्या को पाप कहा है पाप। श्रद्धेय महाराज जी ने इस विषय को बहुत पाप के लिए कहा और जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, निरंजन देव जी महाराज थे, उन्होंने भरी सभा में महाराज जी की पुस्तक यूं खड़ी करके जोधपुर के गांधी मैदान में कहा कि इससे बड़ा कोई आपको संत का वाक्य मिलेगा नहीं जो तुम्हारे लिए बात है। तो छोटी सी पुस्तक को यूं करके कहा शंकराचार्य जी महाराज, निरंजन देव जी महाराज, उन्होंने गर्भपात महापाप जो पुस्तक थी सभा में यूं करके कहा। बहुत बातें कही उन्होंने उस दिन सभा में, जो लोग उपस्थित थे उन्होंने आकर महाराज जी से बताई। भरत जी महाराज कहते हैं कि भ्रूण हत्या मसी प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्, भ्रूण हत्या तुमने किसी जन्म में की होगी ना, तब इस कुल के नाश के विषय में तुमने विचार किया है। के कही मेरा बस चले तो तुझे मैं सीधा नरकों में भेजूंगी, कभी मेरे पतिलोक में जाने की तुम अधिकारी नहीं हो, ऐसा पाप कर दिया और सर्वलोकप्रिय श्री राम को तुमने वन में भेज दिया और मुझे तूने कौन सा सुखी बना दिया, मुझे भी इतना शोक दे दिया। केकई सबको जो दुख देता है उसका दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है ना, तेरे व्यवहार से किसको सुख मिला? केकई तुझे भी सुख नहीं मिला और तो किसको सुख मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला, राम को नहीं मिला, सीता को नहीं मिला, लक्ष्मण को नहीं मिला, कौशल्या को नहीं मिला, सुमित्रा को नहीं मिला और हमारे पिता तुमको नहीं मिला, प्रजा को सुख नहीं, किसको सुख मिला मेरे समझ में नहीं आया, तूने काम किया ही क्यों, सारे संसार में तुमने एक अपयश ही अपयश कमाया है और तुमसे मैंने जन्म लिया ना, इस अपयश का जड़ मैं भी हूं, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है, एक तो शत्रु शत्रु के रूप में आता है लेकिन तू मेरे लिए माता के रूप में शत्रु बन करके आई है, किस मुंह से मैं कौशल्या के पास जाऊंगा, किस मुंह से मैं सुमित्रा से बात करूंगा, सच्ची बता तू तेरे बाप की बेटी है क्या? न त्वम अश्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः, तू अपने धर्मात्मा बाप की बेटी नहीं है, तू कोई राक्षसी पैदा हुई है और वो राक्षसी अयोध्या के पाप के कारण से अयोध्या में घुस गई है, राम को तुमने वनवास भेज दिया है और फिर यहां कहती है कि शोक मत करो, शोक करने लायक काम करती हो, आग में हमको बैठाती और फिर कहते हो आग में तपो मत, तूने आग लगाई क्यों, आग के अंदर हमको बैठाया क्यों, हमको आग में तो बैठा दिया और कहती है कि आग के अंदर तुम तपो मत, बड़ी आज्ञा देने चली हो तुम, ये महल है जिसमें न राम है न लक्ष्मण है न सीता है न पिता है और ये महल है, ठीक है ठीक है, के कही हम सब लोग यहां से निकल जाते हैं, सब निकल जाएगा, हम सब प्रजा को बोल देंगे कि अपने सब लोग यहां से अयोध्या खाली करके चलो, फिर तो अयोध्या के अंदर बैठी रहना, न तो सेना रहेगी न खजाना रहेगा न सेनापति रहेंगे, एक केवल तुम रहोगी, अंग प्रत्यंग जय पुत्रो हृदया चाबी जायते तस्मात प्रियतरो मातु प्रिया एव तु बांधवा, बेटा सबसे ज्यादा प्रिय होता है, उस बेटे के लिए तुमने ये प्रिय कार्य किया, तुमने नरक का रास्ता खोला है, अरे बेटा तो सबको प्रिय लगता है, एक गाय कितनी अच्छी होती है तेरे से तो गाय अच्छी गाय, तुझे पता नहीं है एक बार की बात है, ये कामधेनु गाय आकाश से जा रही थी और पृथ्वी के ऊपर भयंकर गर्मी पड़ रही थी, जेठ अषाढ़ की गर्मी, उसमें किसान अपने दो बैलों को हल लेकर के उस गर्मी के अंदर खेत जोत रहा था और वो दोनों बैल वो बेचारे हल को खींच रहे थे। गर्मी में उनको बड़ी जो है वो वेदना हो रही थी और पीछे से वो कोड़ा मार रहा था बैलों के और खेत खेत जो है हाँक रख वो हल चला रहा था खेत में भयंकर गर्मी में। ऊपर से आकाश से कामधेनु ने देखा। कामधेनु के मन में दया आई, अरे मेरे वंश के ये बैल कितना दुख पा रहे हैं। ऐसे करुणा से उनके आंख से आंसू आए। वो आंसू यूं नीचे गिरे, नीचे से इंद्र जा रहे थे, इंद्र के शरीर के ऊपर कामधेनु के आंसू गिरते ही इंद्र ने देखा कि भाई आंसू कहां से। ऊपर देखा, ऊपर देख करके कहा रे ये तो कामधेनु है। इंद्र सीधा ऊपर जाकर के कहा मां क्या बात है, किस बात का कष्ट है, कोई देवताओं पर कष्ट आने वाला है या तुम्हारे पर कोई कष्ट है, बताओ। मेरे पास ये वज्र है, वज्र आप पर कोई कष्ट आया तो बताओ, मैं इस वज्र के द्वारा अभी उसका बदला लेता हूं। या आप कोई भावी कष्ट देख रही हो, क्या बात है आपकी आंखों से आंसू क्यों आए। कामधेनु ने कहा अरे मुझे पता नहीं था कि तू नीचे से जा रहा है, देख भयंकर गर्मी के अंदर ये बैल हल को खींच रहे हैं और पीछे से इनके कोड़ा पड़ रहा है, तो मेरे मन में दया आ गई, ये मेरे ही तो है। अच्छा हे मां ये तुम्हारे बेटा है क्या, साक्षात तुम्हारे बेटा है। साक्षात नहीं, मेरी जाति के तो हैं, माने मेरे से पैदा होने वाली अनंत गायें, उन गायों की गायें, गायों की गायें, गाय 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 गाय, कितने ही पीढ़ी के बाद में कोई गाय उसके बेटे है तो मेरे ही ना। तो इन दोनों बैलों की दशा देख करके मेरे आंख में आंसू आया था, तुम कोई नया विचार मत करो। इंद्र को बड़ी शांति मिली, कोई आफत तो नहीं आई। अरे कामधेनु जैसी गाय है उसके मन में भी इतनी दया है, तुम्हारे मन में जरा सी भी दया नहीं आई कि राम वन में चले जाएंगे तो किस प्रकार से वो कष्ट पाएंगे, पीछे कौशल्या की क्या दशा होगी, महाराज की क्या दशा होगी और भरत की क्या दशा होगी, किसी के पीछे में तुमने कुछ नहीं सोचा।